तफसीर देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजें पारे के नाते से और फिर उसके बाद सबक और फिर आयात के नाते से। अल्हम्दुलिल्लाह, चौथे पारे की पहली आयत है, और जिस तरह के हर आयत का एक थीम होता है, हर सूरत का होता है, इस तरह गौर व फिक्र के बाद ये भी मालूम होता है कि हर पारे का भी एक थीम है। हम चौथे पारे के मेन थीम की बात करेंगे। एक सेंटेंस बोलती हूँ, उसकी रोशनी में आप सारी आयात को सुनेंगे, और वो क्या है? उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल और उनका हल। द प्रॉब्लम्स जो मुस्लिम उम्मा फेस कर रही है आज के दौर में, वो क्या हैं और उनका सलूशन, यानी आप कह सकते हैं प्रॉब्लम्स एंड द सलूशन ऑफ द मुस्लिम उम्मा नॉडेज। हम सब पीछे दूसरे पारे के आगाज में ये बात कर चुके कि मुसलमानों से पहले दीन के नुमाइंदे या लीडर्स जो थे वो ज्यूस थे। आप कह सकते हैं कि मुसलमानों के आने से पहले ज्यूस रिलीजियस पीपल थे, लोग उनको रिलीजन के लीडर्स के नाते से जानते और पहचानते थे, लेकिन उन्होंने उस हक की कदर ना की। तीसरे पारे की आखिरी आयात अगर आप अपने जहन में रखें तो वहाँ डिटेल से हमने ये चीज़ देख ली कि हक की वो दौलत जो अल्लाह ताला ने यहूद के पास रखी थी, उन्होंने उसकी कदर ना की, हक को अपने नाम और अपने ज़ाती मुफादात के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो नेमतें अल्लाह ताला ने उनको दीन के लिए दी थी, उन्होंने अपने नाम के लिए इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, लिहाजा अल्लाह ताला ने उनको वहाँ से हटाकर मुसलमानों को उनकी जगह पर रखा, और किबले के तब्दीली की आयात जो थी उसकी बहुत बड़ी दलील थी। अब जब मुसलमान आए तो यकीनी बात है कि हर नई हुकूमत पिछली हुकूमत की हुई तब्दीलियों और उनके जो पोल होते हैं उसको खोलती हैं। जब मुसलमानों ने देखा कि ज्यूस को जो शरीयत दी गई थी वो तो आज चंद लोगों के फतावा और चंद लोगों के इज्तिहादात का मजमुआ बन चुकी है, यहूद में जिसको आप कह सकते हैं ना कि अपना आप बनवाने की बहुत आदत थी, यानी मोनोपोली कहते हैं इंग्लिश में उसको, या कुछ लोग होते हैं ना जो चाहते हैं कि पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में रहे, कंट्रोलिंग हैबिट थी ज्यूस की। उनके उलमा चाहते थे कि हमसे हटके कोई इधर उधर ना जाए, हम लोगों के सियाह और सफ़ेद के मालिक हों और हम जो चाहें बस वही दुनिया में होने लगे। इसकी वजह से उन्होंने कर क्या दिया था कि नेकी के तसव्वुर को बहुत लिमिटेड कर दिया था। चंद रिचुअल्स का नाम नेकी है, चंद इबादात का नाम नेकी है, और उन्होंने नेकी को बिल्कुल मस्जिद कह लें या सिनेगॉग तक जमा कर दिया, और बाकी पूरी ज़िंदगी लज्जत खाना पीना माल मता दौलत और सरदारी की तलब को अपना मकसूद बना दिया। इस्लाम जब आया तो अल्लाह सुब्हाना ताला को इस पर बड़ी गैरत आई कि इनको क्या हक पहुंचता है लोगों को इतनी मुश्किल में डालने का, मैंने तो लोगों को बड़ा खूबसूरत दीन दिया था जो सिर्फ इबादत नहीं मामलात भी सिखाता है, ज़िंदगी के सारे तरीके सिखाता है, तो इन्होंने इसको इतना लिमिटाइज कर दिया। तो उस पे ये आयतें लन तनालुल बिर हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून नाजिल हुई, कि जिसमें नेकी का एक बहुत वसी सिनेरियो दिखाया गया, बहुत वसी पैमाने पे नेकी दिखाई गई। अभी हम जब आयत करेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा होगा कि सिर्फ लफ्ज बिर के 7 से 8 मीनिंग्स जो हैं वो हमें मिलते हैं, जिससे एक रटी रटाई नेकी नहीं बल्कि जिन नेकी वो होती है जो बंदे को चारों तरफ से घेर ले। उसकी नमाज उसका तारुफ नहीं होती, उसका किरदार उसका तारुफ होता है, उसके मामलात उसका तारुफ होते हैं। अफसोस की बात है कि आज इस दौर में हम कुरान पढ़ रहे हैं, मुसलमानों में भी कुछ ऐसी ही सोच आ गई जो कल ज्यूस में थी, लिहाजा आज भी अल्लाह ताला ऐसी सोच पैदा करने वालों को उभार रहा है कि जो लोगों को रिचुअल्स और रटे रटाए दीन के कॉन्सेप्ट पे रखने और चंद हाल हुलियों और चंद रिचुअल्स को करने के बाद दिल में कीने बोगस हसद रकावटें रखने के बावजूद खुद को नेक समझने और समझाने वालों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, और ऐसे लोग बिल्कुल आज पहले से दीनदार लोगों के लिए उसी तरह खटक रहे हैं जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ज्यूस को खटकी थी। उस दौर में भी कोई लोग बेदीन नहीं कहते थे खुद को, वो कहते थे इस शख्स को क्या हो गया, सारी बातें आसान करता जा रहा है, ये भी कोई दीन है, ये भी सही है, ये भी कर लो ये भी कर लो। हम तो बाप दादा के वक्त से सोचते हैं कि सर पे दुपट्टा लिए बगैर वजू होता ही नहीं, दुपट्टा उतर गया, वजू टूट गया। हम तो शुरू से सुनते आए कि जी आप ये नहीं पढ़ सकते, नमाज ऐसे नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये क्या हो गया? अब ये हर चीज़ को जायज़ करार दे रहे हैं, दावतें भी करो, पहनो भी, ओढ़ो भी, औरतें भी जाएं और जाएं। तो इस किस्म की सोच आज भी मौजूद है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि पारे का जो थीम है उसको हर सबक में से लिया करेंगे, कि आज इस सबक को पढ़ने के बाद इंशाल्लाह ताला हम सब ने अपने आप को इस चीज़ के लिए इंशाल्लाह ताला तैयार करना है कि आज अगर उम्मत मुस्लिमा के सामने बिग बिग चैलेंजेस हैं तो उसका सलूशन भी इस किताब की रोशनी में मौजूद है। और इंशाल्लाह वो हालात बनते जा रहे हैं कि लोग अब वाकई पिछली जनरेशंस की हुई गलतियों को दोहराने के लिए तैयार नहीं, और अब मुसलमानों की बागडोर उन लोगों के हाथ में है कि जिन्होंने अपने आप को हकीकत में पहले कुरान और सुन्नत से मुतारफ किया, दीन की असल रूह को समझा, और उसके बाद फिर वो दीन के नुमाइंदे बन रहे हैं। और अल्लाह करे कि ये दीन जंगल की आग की तरह फैल जाए, कि जिसकी वजह से कितने लोग हैं जो महरूम रह रहे हैं। कल कोई ब्रदर थे तो वो बताने लगे, कल या परसों ऐसी कोई बात किसी के सामने हो रही थी तो उन्होंने कहा कि एक लड़का नौश था, वो ढूंढता ढूंढता आया, इधर ही हमारी जगह पे आया और मेरे हस्बैंड को के बारे में पूछ रहा था, तो वो आजकल इधर नहीं है, ट्रिप पे गए हुए हैं तो नहीं मिले। फिर वो कहते हैं कि उसने कहा कि मुझे फौरन किसी दीनदार से मिलाओ। तो कहते हैं कि हमने उनको एक और यंग ब्रदर हैं जो दीन की समझ बूझ रखते हैं उनसे मिलवाया। फौरन वो लड़का ऐसे लग रहा था कि बड़ी जल्दी में, खैर किस्सा मुख्तसर ये कि वो उस ब्रदर के पास बैठा जिसको दीन का इल्म और दीन की बात है, कहते 2 घंटे उसने बात की उससे इस्लाम पे, और फिर का अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तड़प अंदर इतनी है, इतनी बेचैनी है, आप भूखे हो, आप तो कहते हैं जहाँ से मिले खा लूँगा, या आज हम मुसलमान हैं मुजरिम हैं हम, कल अल्लाह की अदालत में जवाब दे होंगे कि हमने कौन सा दीन लोगों को दिया, अपनों को नहीं दिया, दूसरों को कहाँ देंगे। तो जो बात मेरे तक पहुँची उन्होंने कहा कि ब्रदर इधर नहीं थे, ये बड़ा अच्छा एक मौका आया हुआ था तो छिन गया ना, कि यदि इनको भी अगर इनके साथ बैठता दिल तो अल्लाह ने खोलना। तो मैंने उनकी जिन्होंने मुझे बात नहीं, मैंने ये सुन के कहा फिक्र ना करें, ये एक अभी मुसलमान हुए, अभी ऐसे लाखों मौजूद हैं, मौके तो आते ही रहेंगे, और जिसको जिसने अल्लाह ताला ने जिसके दिल में डाला है उसका अजर बना दे। तो बात ये है कि जब हम किसी चीज़ को बहुत छोटी जगह पर बंद कर लेते हैं ना तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। आप जूते के अंदर, पाँव के अंदर ऐसा जूता पहना दें कि जिसके लोहे का हो, मैंने ऐसे वाकया सुने हैं कि बाज़ लोग छोटे बच्चों को ऐसे जूते पहना देते हैं फिर उनके पाँव की ग्रोथ नहीं होती, फिर वो हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, फिर उनसे बैगिंग करवाई जाती है, इसी तरह कुछ के सर बांध दिए जाते हैं। तो आज दीनदारों ने दीन को यकीन करें इस ग्लास से भी छोटा कर दिया, जिसमें इतना बड़ा समंदर अल्लाह की रहमतों का समेटना चाहते हैं, सिमट नहीं पा रहा, और सोच पैदा होती जा रही है जो तासुब वाली और बहुत नैरो माइंडेड मुसलमान होते जा रहे हैं। आज मुसलमानों पे जितने भी इल्ज़ाम लगते हैं उसकी बहुत बड़ी वजह आज के मुसलमान लीडर्स हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि दीनी, सियासी और इखलाकी लीडर्स को पहले खुद दीन की असल समझ आ जाए और फिर वो उसको पेश करें। आम लोग तो कल छुट जाएंगे इंशाल्लाह, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। इसी तरह याद रखिए जो नॉन मुस्लिम है उनके आम लोग आसानियों से छुटेंगे, अल्लाह को पता है किसके साथ क्या मामला होना है। लेकिन सिर्फ एक बात बता रही हूँ कि इस तरीके से ये होगा, लेकिन जो बड़े लीडर्स होते हैं ना उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें अब इंशाल्लाह पूरे पारे में फील करेंगे। फिर एक और चीज़ जो पिछले पारे और इस पारे के मिडवीन में देखें, तो आपने तीसरे पारे के आखिर में इस्लाम पर बहुत बात सुनी ना, सबको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना कि वो मैं यब तगी गैर अल इस्लाम दीन, जो कि इस्लाम के सिवा दूसरा दीन मांगेगा अल्लाह उसका वो कबूल नहीं करवाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इस पारे के अंदर अब इस्लाम फिर है क्या, क्या करना है क्या नहीं करना उसकी बात है। पहली आयत ही असल में उम्मत वसत को बता रही है कि अगर तुम उम्मत वसत बनना चाहती हो तो आप तुम फिर कुछ पाबंदियाँ अपने ऊपर लगाओ, कुछ खाने पीने, कुछ भूख प्यास बर्दाश्त करो ताकि अल्लाह ताला तुमसे राज़ी हो और तुम उन तमाम चीज़ों को पालो कि जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रखी है। फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम कुछ चीज़ें साथ साथ भी करेंगे, लेकिन एक मेन कॉन्सेप्ट था। सूरत तीसरे पारे की बिल्कुल आखिरी आयत को ज़रा साथ देख लीजिए, 91 आयत में अल्लाह सुबहाना ताला ने कुफर की हालत में आने वाले लोगों की बात करके फरमाया, आयत 91, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولوفد دا به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کفر ہی کی حالت میں تو ہر کس بھی قبول نہ ہوگی ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر کر سونا اگرچہ کہ وہ بدلے میں دیا جائے اسی قدر سونا اور ان کو دردناک عذاب ہے اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. تو اس آیت میں بتا کیا دیا کہ وہاں ایمان کی قیمت پتہ چل جائے گی تو کفار اللہ کے عذابوں سے بچنے کے لیے زمین بھر سونا دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بتا دیا کہ اگر خرچ کرنا ہے, اگر دینا ہے, کوئی صدقہ ہے, کوئی خیرات ہے تمہاری کوئی چیز, تو پھر اس کو دنیا میں دے دو. ایسا نہ ہو کہ کل تم جب دنیا سے جانے لگو تو تم بہت سارا چھوڑ دو اور کہہ دو کہ میرا مال دوسرے کے کام آ جائے, تو وہ درست نہیں. وہاں تو چونکہ کفر کی بات ہے نا, آج مسلمانوں کو بھی اسی بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من قبل یاتی احدکم الموت, کہ اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا خلاصہ تھا. اب چلتے ہیں ساتھ ساتھ آیت کو لے کر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, ہرگز نہیں تم حاصل کر سکو گے نیکی میں کمال جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اپنی پیاری چیز میں سے کچھ. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم, اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کو اس کا خوب علم ہے. اس آیت کا رب پیچھے سے ہم نے دیکھ لیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی رغبت دلائی. لفظ لن کو دیکھیں گے تو فیوچر کے لیے آتا ہے, نیور کے معنوں میں. ایک لفظ ہوتا ہے لا, نو یو ول ناٹ ڈو دس, ایک ہوتا ہے یو ول نیور ڈو اٹ. تو یہاں لن کیا ہے, تم یو ول نیور ڈو اٹ, چیلنج. اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایک معیار دے دیا کہ کوئی اگر پانا چاہتا ہے. تنالو کا لفظ نالا یا نیلو نیلن سے, لفظ نائلا بھی اسی سے ہے, پا لینے والی, اچیور. کس کو نہیں تم پا سکتے؟ البرا, بر کو. تو بر کیا ہوتا ہے؟ ڈکشنری میں اس کے پانچ مختلف معنی ہمیں ملتے ہیں. نمبر ایک, خیر کامل, کمپلیٹ خیر. ایک ہوتی ہے تھوڑی بہت بھلائی, کسی کو پارشل قسم کی خیر مل گئی, سکسیس مل گئی, لیکن خیر کامل کہتے ہیں کمپلیٹ, جب مل گئی تو اس کے بعد پھر بندے کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو. دوسرا ہوتا ہے اس کا معنی رضا, پلیئر. تیسرا, رحمہ, رحمت. چوتھا معنی ہے جنت, اور پانچواں معنی ہے نیکی. تو لن تنال البر کا اگر آپ مفہوم کریں تو کیا کہیں گے؟ تم خیر کامل کو نہیں پا سکتے, تم اللہ کی رضا کو نہیں پا سکتے, تم اللہ کی رحمت کو نہیں پا سکتے, تم جنت کو نہیں پا سکتے, تم نیکی کو نہیں پا سکتے. ایک چھٹا معنی بھی لکھ لے, میں بھول گئی آپ سے ذکر کرنا. ایک چھٹا معنی بھی ہے بر کا, اور وہ ہے عمل صالح, نیکیاں کرنے کی توفیق. صالح عمل کو تم پا نہیں سکتے کب تک؟ حتی تنفقو, جب تک کہ تم خرچ کرو. تنفقو کا لفظ نون فاقاف سے ہے, پیچھے ہم نے تیسرے پارے میں کثرت سے یہ لفظ سنا, یونفقون, تنفقون, تنفقو, یونفقو میں نفقہ کہتے ہیں ٹنل کو, سرنگ ہوتی ہے نا, ایک طرف سے آپ جاتے ہیں تو دوسری طرف سے ہی نکلنا پڑتا ہے. سرنگ میں آپ یو ٹرن نہیں لے سکتے نا, سرنگ سے بڑا ٹنل یا تنل بولتے ہیں آپ لوگ, ہاں, ایک دفعہ آپ گھس جائیں تو آپ کو دوسری طرف جانا پڑتا ہے. اسی سینس کو ذہن میں رکھیے کہ خرچ کیا ہوتا ہے, کہ آپ کے ایک ہاتھ میں آیا نا تو دوسرے سے چلا جائے گا, آپ اس کو سمیٹ کے رکھیں. کچھ گاڑیاں اگر کسی ٹنل کے اندر بلاک ہو جائیں, رک جائیں, کوئی بریک لگا سکتے ہیں؟ کراؤڈیڈ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. آپ اندر گئے ہیں, فوراً آپ کو ایک خاص سپیڈ سے وہاں سے نکلنا پڑتا ہے. تو تنفقو, مال کے خرچ کرنے, یعنی ایسے شاورنگ کی سینس آ رہی ہے کہ منی کو, مال کو, جو کچھ بھی تمہارے سامنے ہے, جو بھی تمہیں اللہ نے دیا, جب تم اس کو خرچ کرنا چاہو تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اللہ کا پلیئر لینا چاہتے ہو, اللہ کی رضا لینا چاہتے ہو, تو پھر تم کیا کرو گے؟ تنفقو مما تحبون. لفظ مما کو دیکھ لیتے ہیں, من اور ما کو جمع کریں. اب دیکھیے کہ یہ دیکھنے میں تو ایک لفظ لگ رہا ہے نا, مما, اصل میں یہ کیا تھا؟ من. من کا معنی کیا ہے؟ فرام, سے. ما میں نے جو, وٹ. تو مما کیا ہوا؟ اس میں سے جو. यानी सम ऑफ वर्ड, सारा नहीं दो, कुछ तो दो। यहाँ लफ्ज मिम्मा बहुत ही खूबसूरत है, जो हमें बता रहा है कि सारा नहीं मांग रहा अल्लाह ताला तुमसे, हमेशा भी नहीं मांग रहा, लेकिन कभी कभी तो दो। हमेशा वो देते हो जो तुम्हारा दिल चाहता है, कि अब इससे जान छुड़ानी है, कभी कभी वो भी तो दो जिसको तुम पसंद करते हो। मिम्मा तो हिब्बोन, जिसको तुम पसंद करते हो। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह सुबहाना ताला ने जो हमें दिया है और हम उसमें से क्या खर्च करें और क्या पसंद करते हैं। अमूमन जहाँ भी खर्च की बात आती है, आप सोचिए ज़रा कि तुहिब्बून, हम क्या कुछ पसंद करते हैं, क्या क्या चीज़ें जो हमारे पास हैं, क्या आता है खर्च करने की बात है तो सबसे पहले क्या जहन में आता है। देखिए जब भी खर्च की बात आती है ना, तो हम फौरन पैसे से शुरू करते हैं, हालांकि आपको पता है कि पैसा तो सबसे छोटी चीज़ है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ आता है। सबसे पहले मिम्मा तुहिब्बून में हम खुद आते हैं, आई एम, माई सेल्फ, अना, ईगो। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मेरे रास्ते में जब खुद को पेश नहीं करते, जब तक मेरी मेरे रास्ते में तुम अपने आप को नहीं लगाते, अल्लाह के रास्ते में तकलीफ़ों को बर्दाश्त नहीं करते, ईगो को नहीं छोड़ देते, अल्लाह का दीन किसी बात का तकाजा करे, लोग तुम्हें उस पर मजाक करें, तुम्हारे रास्ते में रुकावटें खड़ी करें, तो तुमने क्या करना है, कोई बात नहीं, होता है तो वो, मेरा क्या नाम है, मेरी मेरा क्या गेटअप खराब होगा, क्या मेरी इज्जत खराब होगी। तो अपना आप, फिर इसमें सेहत, इंसान को अपनी सेहत बड़ी प्यारी लगती है। बस अब अल्लाह के रास्तों में इंसान इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि अपनी सेहत की वक्त ही नहीं होता। सिर्फ इसलिए बंदा डॉक्टर पे नहीं जाता कि वक्त बहुत लगेगा, उसकी फीस नहीं अफोर्ड करने की बात, वो वक्त नहीं अफोर्ड कर सकते, और वो जो दवाइयों के असरात हैं और जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कामों से रोक लेंगे। बस दफ़ा इंसान अपना फिगर ख़राब करने से डरता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा जब दीन का वो मरहला जो इस वक्त आप सबके ऊपर है कि दिन में कई घंटे बैठना पड़े, तो बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं जी मेरा फिगर ख़राब हो गया, मैं तो मोटी हो गई, मेरे तो कदम भारी हो गए, तो ये सब कुछ करना पड़ता है। फिर आप देखिए नींद कितनी प्यारी होती है, आप में से कितने होंगे जो नींद के इतने आदी होंगे, लेकिन अल्लाह का कलाम सीखने के लिए आप सुबह सुबह उठ के आ गए, तो क्या ख्याल है आपने इस वक्त अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान नहीं की। फिर आप देखिए कि वक्त, हमारा जो वक्त है ये हमें कितना प्यारा होता है। फिर आप देखिए औलाद, बच्चे, किड्स, पार्टियाँ, घर, जेवर, स्किल्स, गाड़ियाँ, सवारियाँ, ऐसे लगता है एक लंबी लिस्ट है इंसान की। अल्लाह ताला कहते हैं इसमें से खर्च करो मेरे रास्ते में। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज़ नेकी को पा ही नहीं सकते जब तक कि अपनी मनपसंद चीज़ों में से अल्लाह के रास्ते में खर्च ना कर दो। अल्लाह के रास्ते में जब तक मनपसंद ना दिया जाए, ये यकीन ही नहीं आता कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है। हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसका क्या मियार होता है हमारे पास, अपनी मनपसंद चीज़ उसको देना चाहते हैं। बाज़ लोग गिफ्ट देते हैं ना शादियों पर, दावतों में, बस उठा के दे दिया, लेकिन जिसको दिल से देते हैं उसके लिए कहते क्या दो, नहीं ये तो नहीं, उनके काबिल नहीं। फिर आप कहते जो चीज़ मुझे सबसे प्यारी लगती है मैं तो वो दूंगी। इंसान को कैसे पता चले कि मुझे ये चीज़ प्यारी है कि नहीं, तो इसका इजहार क्या है कि आप देखें कि किस चीज़ के देने का सोच कर दिल पे हाथ पड़ता है। मसलन छोटी सी मिसाल है कि हम सबके पास कपड़े होते हैं, एक ये कि एक सूट आप 2-4 साल से पहन चुके हैं, खूब अच्छा इस्तेमाल हो चुका, अभी भी अच्छा है, फिर भी पहन चुके हैं, आप अगर उठा के किसी गरीब को दे देते हैं आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा, खुशी होगी बल्कि कि चले मैंने पहन लिया कोई पहने। लेकिन कोई एक ऐसा जोड़ा जो आपने बहुत ज़्यादा दिल के साथ मनवाया, बिल्कुल नया नया बन के आया, और सोने पर सुहागा अगर बुटीक से आ जाए, और आए भी कई हज़ार का, पहने तो आप तो परी लगे उसमें, जच रही हैं, उस वक्त ये आयत आपके सामने आ जाए कि हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून, उसमें से खर्च करो जो तुम पसंद करते हो, तो चोट पड़ती है ना। कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको बड़ी प्यारी होती है, मसलन जेवर आपके पास बहुत है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो आपको बड़ी प्यारी लगती है, नायाब किस्म की है, वो है मिम्मा तुहिब्बून। क्यों भला? इसलिए कि अल्लाह देखना चाहता है कि तुम अल्लाह को चूज़ करते हो कि उसको चूज़ करते हो। यहाँ असल में रुपये, पैसे, माल, दौलत की कसरत या उसकी कीमत की बात नहीं है, ये जज्बों की कुर्बानी है। मोहब्बत जज्बात के साथ होती है। अल्लाह सुबहान तआला ये देखना चाहते हैं कि तुम मेरे लिए अपने जज्बे कुर्बान करते हो कि नहीं। ये जो फजर की नमाज है ना, ये सुबह 9 बजे भी हो सकती थी, 11 बजे होती तो और भी अच्छा था, लेकिन क्यों सनराइज से पहले रख दी कि हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बुन, तुम खर्च करो अपनी नींद को छोड़ो मेरे लिए जो तुम पसंद करते हो। ये दिन की 5 नमाजें जो है ना, ये आपके 5 टेस्ट हैं मिम्मा तुहिब्बुन के। हर नमाज का वक्त आप देखें तो ज़रूर कोई ऐसा वक्त है कि जिसमें इंसान कोई ऐसा काम कर रहा होता है जिसमें उसको मज़ा बहुत आता है। फजर में गहरी नींद आई होती है, जोहर में भूख लगी होती है, खाने की टेबल है, असर के वक्त फिर दोबारा नैप लेने को लेट जाता है इंसान, या उस वक्त किसी ऐसी गहमा गहमी में बाजार में घूम रहा है, कोई ऐसी चीज़ को डील हो रही है, बिल्कुल पीक टाइम होता है कस्टमर्स की सेल का कारोबार में, क्योंकि सबको पता है कि इसके बाद रात होनी है। मगरिब का वक्त एक खींचा तानी का वक्त होता है, दिन जा रहा है, रात आ रही है, अभी कितने अधूरे मंसूबे हैं, अभी खाना भी पकना है, अभी बाहर के भी काम है, और ईशा के वक्त सारा दिन कर कर के भाग भाग के थक चुके हैं। 5 कुर्बानियां दिन में अल्लाह ताला मांगते हैं मिम्मा तुहिब्बुन की। वमा तुन्फिकु मिन शैइन फइन्नल्लाहा बिही अलीम। बंदा कहता है किसी को क्या पता चलना है मैंने मनपसंद सूट दिया है या दूसरा दिया है, वो चीज़ दी है जो मुझे पसंद थी या वो दी है जो मुझे नहीं पसंद थी, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम दूसरों की फिक्र क्यों करते हो, जिसके लिए दिया उसको पता। आप देखिए कि जब आप किसी को कोई गिफ्ट देते हैं कितना हसीन गिफ्ट होता है, फिर आप उसको पैक करते हैं। आप इमेजिन करें कोई पार्टी है, सब गिफ्ट के डिब्बे लेकर आए, आप पैक क्यों करते हैं, खुला क्यों नहीं लाते? उस पार्टी में आए हुए 100 लोग भी तो देखें, पर आप क्यों नहीं खोलते? आपकी नजर किस पे होती है? जिसके लिए लाए। जब वो खोलेगा तो उसको खुशी होगी। आपको इसकी कोई केयर नहीं कि देखें दूसरे के मैं क्या लाई हूँ, आपको ये केयर होती है कि जिसके लिए लाई हूँ उसको कैसी लगती है वो चीज। तो अब आप सोचिए कि जब हम अल्लाह के लिए कुछ करें, जब तक अल्लाह के लिए नहीं करेंगे, इमाम मालिक की बात कि मा काना लिल्लाहि बकिया, इस लफ्ज को अपना स्लोगन बना ले, मा काना लिल्लाहि, जो भी अल्लाह के लिए मेरा काम होगा बकिया वही बचेगा। बहुत सारे लोग देखा देखी नेकियां भी करने लगते हैं, रिवाज हो जाता है, पीयर प्रेशर होता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके लोग छोड़ देते हैं, सिर्फ एंड पे वही लोग बचते हैं। मा काना लिल्लाहि, याद रखिए अल्लाह हमारे ये 30 सुपारों के अंदर कई टेस्ट लेता है। एक टेस्ट कोई सेहत का टेस्ट लेता है किसी का बच्चे का टेस्ट आ गया, किसी का शादियों की सूरत में टेस्ट आ गया, किसी का जॉब का टेस्ट आ गया, ये 30 टेस्ट भी अगर 30 पारों में आते हैं ना, तीनों में आप जमे रहते हैं ना, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फइन्नल्लाहा बिही अलीम, मुझे पता है तुम किन दुश्वार रास्तों से गुजर के आते हो, मुझे पता है कि तुम कितनी कुर्बानियाँ दे के आते हो, मुझे पता है तुमने अपनी नींदें छोड़ी, तुमने अपने बच्चों को छोड़ा, तुमने अपने खाने गर्म छोड़े, तुमने अपने घर की बारीक सफाइयाँ छोड़ दी। कोई बात नहीं, अल्लाह कहता है मुझे पता है तुम्हें पार्टीज़ का कितना शौक था, तुम्हें बड़े बड़े खाने पकाने और खिलाने का कितना शौक था, अल्लाह को पता है तुम्हें घर में क्रिस्टल्स लगा के सजाने का कितना शौक था। मैं सोचती हूँ कि जितने हमारे घर में क्रिस्टल के डेकोरेशन पीस होते हैं, ये सारे जमा करके इसको एवेल्यूएट करें ना, तो शायद उससे मेरा हल एक छोटा सा कमरा बन गया। और एक साथी की बात याद आती है अक्सर ऐसे मौक़ों पे कि इस तरह शोकेस में उनके छोटे छोटे पास पड़े हैं कि जैसे किसी बहुत बड़े स्टोर में बिकने के लिए चीज़ें पड़ी होती हैं, हर वेराइटी, पूरी दीवार क्रिस्टल की। वो भी हैरत की बात कम थी जब ये उन्होंने कहा कि मैं ये सारी अलमारी हर रोज़ खुद साफ करती हूँ। पाकिस्तान की ये बात है, मेट्स को नहीं हाथ लगाने देती इतने कीमती, एक एक बुत उठाती हूँ फिर साफ करती हूँ। ये है वर्शिप, आइडल वर्शिप नहीं, आइडियल वर्शिप कह लें। आप सोचें जरा जिस चीज़ पे हमने इतना वक्त लगा दिया आज तक, आज है मेरे पास। मसलन आप देखिए कि जब इंसान छोटा होता है ना, यानी बिल्कुल यंग होता है, बच्चों के खिलौने बच्चों को प्यारे होते हैं, आप उनका एक छोटा सा कोई टॉट लेके देखें, कोई उनका एक टॉडलर लेके देखें रोने पड़े, ऐसे लगेगा सारी जायदाद ही किसी ने ले ली। रो रो के मैं कहती हूँ इसके लिए रो रहे हो, लो पकड़ो। आप सिर्फ एक कैंडी लेके देखें बच्चे के आंसू, जितनी जल्दी रोते हैं ना उतनी जल्दी हंसने भी लगते हैं, आंखों में आंसू होते हैं और हंसने लग जाते हैं। आज हैं वो सारे खिलौने, आप सबको अपने वो खिलौने याद है जिसके वक्त शायद आपने कई दफ़ा अपने भाई बहनों से लड़ाइयाँ की होंगी। माएँ तो सारा दिन जज बनी होती हैं, मैं किसी के साथ ड्राइविंग कभी कभी मुझे वो राइड देती हैं तो उनके साथ बच्चे भी होते हैं, पूरा वक्त सफ़र में मैं देखती हूँ कि वो जो है वो जस्टिस बनी होती हैं, फैसले चुका रही होती हैं, इसने ये कर दिया, उसको मना रही हैं, वो रो रहा है, दो बहन भाई रो रहे हैं, अच्छा अच्छा चुप करो मैं तुम्हें ये ले दूंगी, वो चुप हुआ थोड़ी देर बाद दूसरा बिगड़ गया। मैं गाड़ी में बैठती हूँ, मैं कहती हूँ आज किसका मुकदमा है आपके पास, मैंने कहा जितना एक माँ को सारा दिन मुकदमे सॉल्व करने पड़ते, इतने तो किसी जज के पास भी नहीं होंगे, वो तो करोड़पति हो जाएंगे। अगर माएँ अपने शौहरों से पैसे लेने लग जाए ना इस बात पे कि हमारे बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चों के मुकदमे भी मैं निपटाती हूँ, तो कोई शौहर अफोर्ड ही ना कर सके अपनी बीवी को। लेकिन ये सच है कि हम सारा दिन इन चीज़ों के पीछे आते हैं। फिर उसके बाद देखिए, हम जब बड़े होते हैं, आप अपने आप को सोचें, आप 10-12 साल की हुई, अमूमन उस वक्त में लड़कियों की क्या ख्वाहिशात होती हैं, छोटे छोटे पर्स लेके फिर रही हैं, एड़ी वाले जूते की बड़ी शौक होता है, और कुछ आप भी शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। 10 ईयर्स से अराउंड जो बच्चियाँ बच्चे होते हैं उनको क्या पसंद होता है, बच्चों को शायद गाड़ियों का शौक होता है। आजकल तो वैसे सच बताऊं शौक ही बदल गया, आज तो 6 साल के बच्चे को भी सेलफोन का शौक है, आज उनके हाथों में भी फिर उनको भी पेनमेंट्स चाहिए और उनको भी आईपॉड्स चाहिए। वक्त से बदल रही है ना चीजें। लेकिन आप खुद को सोचें, जब आप 10 साल की थी तो जिन चीजों पे आप रोती थी, आज अगर आप उस चीज के लिए रोए तो खुद को क्या कहें, हाउ स्टूपिड आई वाज, इतनी बेवकूफ थी मैं, इस पे रोती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब नई नई जवानी आती है ना बंदे पे, अब हम अगर 12 से ऊपर की बात शुरू करते हैं, देखिए आजकल तो बिल्कुल इतनी तेजी से परवरिश ही बदल गई। अब तो कवारी बच्चियां, यंग बच्चियां, उनके पहनने ओढ़ने शादीशुदा में फर्क नहीं, हालांकि बहुत दूर नहीं। आप सिर्फ आ जाके अपनी माओ से पूछिएगा कि मम्मी अम्मी, जब आप 12 से 20 साल के बीच में थी तो आपके लिए नए कपड़े बनाने कैसे होते थे। मैंने खुद देखा है, एक एक जोड़े के लिए बेटियां माओ की मिन्नतें कर रही होती हैं, ये दे दो, वो कहती नहीं ये पेटी में जाएगा, इतने जहेज के लिए रखा है। बच्ची भी बड़ी होती है ना, उसकी पेटी भी बड़ी होती जाती थी। अब तो लड़कियां जो कुछ अब ईदों पे और आम फंक्शंस में पहनती हैं, पहनती इतने भारी जोड़े तो कभी दुल्हन को भी नहीं मिलते थे। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है और ना मैं इतनी पुरानी हूँ, हाँ। लेकिन आप सब देखें कि कल किसी ने बताया, ऐसी कोई बातें लोगों की सुनती हूँ ना तो मुझे फिर वो बहुत फ़ायदा देती हैं। क्या उनके वक्त तो शादी थी तो उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान में किसी से कहा कि मेरे लिए एक दो जोड़ा बना दो, तो जरा मुझे बताओ कैसा और कितने का बनेगा, तो लेकिन मुझे भारी नहीं चाहिए कि मैं तो इधर आऊँगी तो मैं साथ लेके आऊँगी और दिस एंड दैट। तो कहने लगी आपको पता है कि मुझे उन्होंने जो सबसे हल्के कड़े हुए जोड़े की कीमत बताई है वो 15,000 रुपये एक जोड़े की, 30,000 रुपये वो कह रही है भेजो तो तुम्हारे हम दो जोड़े बना देते हैं। तो कह रही मैंने कहा 30,000 के दो जोड़े मैं नहीं बनवाती, इतने में तो दुल्हन के बनते। कहती दुल्हन के कहाँ बनते हैं, दुल्हन का जोड़ा आज मुतवसत दबके तबके में जो लोग बना रहे हैं वो 70-80 हज़ार रुपये से ऊपर चल रहे हैं, और आम लोग जो जरा अच्छे खाते पीते हैं माशाल्लाह वो लाखों में जोड़े बनते हैं। कितना लगता है, कितना कुछ करते हैं। लेकिन आप देखिए आज वो दुल्हन का जोड़ा किधर है, आप में से जिनकी शादी हुई है बता सकता है कोई कितनी दफा पहना है वो जोड़ा। औरतें 10-10 साल के 20-20 साल संभाले रखती हैं ये शादी का जोड़ा, पहन के एक दफा नहीं दोबारा दिखाया उस मर्द को जिस गरीब ने इतने पैसे दिए थे माँ को कि जोड़ा ले आओ। आप सोचिए से एक दुल्हन का मेकअप करवाने के ऊपर 20-25 हज़ार रुपये देने को हम तैयार हैं, जो सुबह सारा सिंक में चला जाएगा बह के। तो जरूरत है इस बात की कि इंसान सोचे। जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा कराम का क्या मिजाज था, थोड़ा सा हम उसको देखेंगे। एक सहाबी थे अबू तलहा, मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब ही उनका बाग था, इसमें एक कुआं भी था, और कुआं यानी वेल होना वहाँ ऐसे ही था जैसे आज आपके घर के बैक में स्विमिंग पूल हो या इससे भी कोई बड़ी चीज़। आज भी कहते हैं बाबे मजीदी जो है उसके पास अस्तफा नाम की एक बिल्डिंग बनी हुई है, तो जहाँ मदीना में ऐसे आने वाले जो लोग रहते तो वहीं ये कुआं था। तो इन्होंने ये आयत सुनी तो सोच में पड़ गए, कहने लगे कि मुझे क्या पसंद है, मेरे रब ने मुझसे कहा है कि तुम्हें जो पसंद है मुझे सबसे क्या पसंद है। फिर कहते हैं कि मैंने अपने दिल में महसूस किया कि मुझे अपना ये कुआं बड़ा पसंद है, ये बाग पसंद है। बेर खा कहते हैं, बेर कहते हैं कुएं को, खा उसका नाम था, और ये इस बाग के अंदर नबी सल्लम भी कभी कभी जाके बैठते थे, वहाँ का पानी पीते थे, और इधर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी थी। फौरन अल्लाह के नबी के पास आए, कहने लगे अल्लाह के नबी मैंने अपने दिल को टटोला तो मुझे तो ये लगा कि मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने इस बाग से है, तो मैं ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हूँ, जहाँ जिस जगह आप चाहें ये दे दें, मैं इसको देने को तैयार हूँ। आप जरा सोचिए एक लम्हे के लिए, ये आज के दौर में ऐसे ही है कि जैसे कोई अपनी फैक्ट्री की चाबियां दे दे, क्योंकि वही उनकी मईशत थी, वही उनकी माश थी। उससे भी बड़ा टेस्ट क्या हो गया, अल्लाह के नबी ने कहा नहीं नहीं मुझे ना दे, आपने देना ना तो अपने हाथों से अपने रिश्तेदारों में बांट दें। अब आप देखिए कि कोई होता ना हमारे जैसा जिसको ये यकीन ही नहीं कि वमा तुन्फिकु मिन शयइन फइन्नल्लाह बिही अलीम, कहता लोग मैंने उनको क्यों देना, मैं जाता हूँ फिर वापस। नहीं, सबसे मुश्किल रिश्तेदारों को देना होता है, लोग विरसे पे लड़ लड़ के मर जाते हैं, जहाँ खून के रिश्ते होते हैं। चलो मुझे नहीं मिलेगा, मेरे भाई को मिल जाएगा, भाई को नहीं मिलेगा तो मेरी बहन को मिल जाएगा, माँ को नहीं मिलेगा तो उसको मिलेगा। खून के रिश्ते जिन पे बंदा एक दिन का गम नहीं बर्दाश्त कर सकता, जिनकी आंखों का आंसू इंसान को तड़पा के रखता है, वो रिश्ते सिर्फ विरासत के बांट पे इतना लड़ने लुड़ने लगते हैं। लेकिन अबू तलहा को देखिए, अल्लाह के नबी के इस फैसले पे कोई चूचरा नहीं की। फिर सोचा किसको दूंगा तो मुझे मुश्किल लगेगा, अपने बहन भाई को फिर भी बंदा देता है, और माँ की तरफ से जो रिश्ते होते हैं ना, जैसे मामू खाला उनको भी दे देता है। लेकिन आपको पता है इन्होंने अपना वो बाग किन में बांटा, अपने चचाजाद भाइयों में, आज की जुबान में कह लें शरीका। सबसे ज्यादा शराकत होती है तो चचा तायों के बेटों में होती है, इन्होंने जाके कहा तुम ले लो। इस बात को सुनते हुए ऐसे लग रहा है कि उस वक्त इस्लाम को इतनी, नबी सल्लम को कोई दीनी मसारफ में इतनी जरूरत नहीं थी, बस वो गरीब थे तो उनको बांट दिया। लोग इस तरह अपनी मोहब्बतों का इम्तिहान देते थे। फिर इसी तरह यह आयत नाजिल हुई तो हजरत जैद बिन हारिसा एक घोड़ा लेकर अल्लाह के नबी के पास आ गए, कहने लगे मुझे अपनी बिलोंगिंग्स यानी अपनी मलकियत की चीज़ों में सबसे ज्यादा महबूब ये घोड़ा है, आप ये ले लें। जरा सोचिए, एक कुल कायनात सिर्फ एक घोड़ा। और आपको पता है कि ये बहुत गरीब थे, नबी सल्लम के मुंह बोले बेटे भी थे, गुलाम कह लें अपनी जुबान में, आपने उनको आज़ाद करके फिर अपना मुंह बोला बेटा बनाया था। अल्लाह के नबी को पता था कि इनका दिल इतना बड़ा है लेकिन ये अफोर्ड नहीं करेंगे, तो आपने क्या किया, वो घोड़े की नकेल ली। फिर इन्हीं जैद के बेटे उसामा को बुलाया, बेटा इधर आओ। जब उसामा आया तो कहा कि अब मैं ये तुम्हें तोहफे में देता हूँ, यानी उनसे ले लिया, उन्हीं के बच्चे को दे दिया। अब हम होते कहते शुक्र चीज वापस कर गए। लेकिन जैद बिन हारिसा इतने दुखी हुए, जाके रोने लगे, कहेंगे अल्लाह के नबी ने मेरा सदका कबूल नहीं किया। आपने फरमाया कि नहीं उसामा जैद, अल्लाह ने तुम्हारा ये सदका कबूल कर लिया है, ये तो तोहफे में। देखिए मोमिन को नेकी के बाद फौरन मिल जाता है उसका बदला। या हम इस दुनिया में चाबी पकड़ा रहे होते हैं ना किसी चीज की, हम एक पकड़ा रहे होते हैं, अल्लाह फरिश्तों को 70 पकड़ा रहा होता है, ये एक इसके हाथ से इधर जा रहा है, ये 70 चुपके से जाके इसके नसीब के टोकरे में डाल दो। सिर्फ ऊपर छत नहीं दिख रही हमें, अल्लाह ने गैब के पर्दों में ये फैसले किए हुए। ये है नेकी। हदीस में एक खुलासा आता है जो बात याद आ गई, आपने फरमाया कि मोमिन की मिसाल तुम्हें मूसा जैसी है कि जो अपने ही बच्चे को दूध पिलाए और उसको उजरत भी मिले। वो क्या कहानी है वो सूरह कसस में आप पढ़ेंगे और सूरह तौहा में थोड़ी सी आएगी कि अपने ही बच्चे को हर माँ दूध पिलाती है, उसको पैसे कहाँ मिलते हैं, बल्कि डांटी पड़ रही होती है, है? और मूसा की माँ फिरौन के घर से बच्चे को ला के दूध पिला रही है और सारे पैसे खर्चा खाना पीना वहां से आ रहा है। सिर्फ अल्लाह हमारा टेस्ट देखता है। आप देखिए कोई बच्चा है ना तो आप उसके हाथ में कैंडी देखते हैं, आप कहते हैं मुझे देना, मैं तो नहीं दूंगी, पीछे करता है ना तो आप कहते हैं मैंने कौन सी लेनी थी, मैं कौन सी खाती हूँ कैंडी, मैं तो तुम्हारा दिल देख रही थी। वल्लाही अल्लाह सिर्फ हमारे दिल देखता है। जो बंदों से अल्लाह करवाता है ना, वो अल्लाह खुद उससे हजार करोड़ मिलियन टाइम, उससे भी ज्यादा टाइम अल्लाह खुद कर सकता है। पलक झपकने में अल्लाह वो चीज़ें मुसलमानों के हाथों में कर दे, वो आप गरीबों को खिला दे पिला दे, लेकिन अल्लाह हमारे थ्रू देता है ताकि देखे कि तुम अल्लाह के रास्ते में क्या सोचते हो, तुम्हारी क्लासिफिकेशन क्या है। जब आयत नाजिल हुई तो हजरत उमर फारूक बैठ के सोचने लग गए, मुझे क्या पसंद है मुझे तो। फिर आए अल्लाह के नबी के पास, कहने लगे ये मेरी एक कनीज है, मेरे दिल में इसकी बड़ी मोहब्बत हो, मैं इसको आज अल्लाह के लिए आज़ाद करता हूँ। इसी तरह अब्दुल्लाह बिन उमर के पास एक कनीज थी, इतनी उनको मोहब्बत थी कि बाद में कहा करते थे कि अगर सदका दे के वापस लौटाना जायज़ होता तो मैं उस लौंडी को वापस लेता, लेकिन उन्होंने अल्लाह के रास्ते में दे दिया। फिर एक और आयत पीछे आपको सुनाई थी, मंजल लजी युक्रिदुल्लाहु कर्दन हसना, जब नाजिल हुई कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसना दे, तो अबू दहदा याद है वाक्या, जिनका बाग था उसी बाग में अपना घर था, अल्लाह मुझे कर्ज मांगता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह कर्ज मांगता है जी, कहा इसलिए मांगता है कि तुम्हें बढ़ा चढ़ा के दे। कहा अल्लाह के नबी गवाह रहिएगा, मैंने अपना बाग जिसमें 600 खजूरों के दरख्त थे अल्लाह के रास्ते में दिया। अल्लाह के नबी ने कहा कि अबू दहदा तूने सौदा फायदे का किया, ये माल तो फना होने वाला है, टाइम होना तो मैं आपको पूरे टेक्स्ट के साथ हदीसें सुनाऊं, जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरा दिल बहुत चाहता है कि आपको अल्लाह के नबी के अल्फाज में सुनाऊं, लेकिन इतना वक्त नहीं होता। आपने कहा सहाबी माल तो फना हो जाना था लेकिन तूने अल्लाह के पास जमा करा दिया, और ये वो बात देकर वापस आए और अल्लाह अपनी बीवी को आवाज़ दी, बाहर खड़े हैं, या उम्मे दहदा, दहदा इनका बेटा था, تو یہ ابو دہدا تھے وہ ام دہدا تھی. یا ام دہدا اخرجی اخرجی، اے ام دہدا باہر آ جاؤ. کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا. پھر آج کی بیوی سوچی کہتی اسی لیے تو میں کہتی ہوں کہ دینداروں سے شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ جذباتی ہوتے ہیں، یہ بات تو میں آ جاتے ہیں. اس نے کہا اے ابو دہدا قدر بحل بھائی، تجھے اس سودے میں برکت ہو، تو نے نفع کا سودا کیا. بچے کو لے کے آ رہی ہیں باہر تو بچے کے ہاتھ میں کھجور تھی، تو کہا بیٹے اس کو پھینک دو، یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا، یہ دنوں کے سودے. ہم یہ کام دن میں کئی بار کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، مگر کب؟ جب ہمیں کوئی ڈائمنڈ کی رنگ پسند آ جاتی ہے اور جیولر کو پہ خرچ کرنا ہوتا ہے، ہمیں ایک صوفہ کم بیڈ پسند آ جاتا ہے، پچھلا پھینکنے کی فکر میں پھینکے کہاں نیا لے کے آئے. ہم بھی خرچ بہت کرتے ہیں لیکن اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے. میں حیران ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے صحابہ کرام کے یہ واقعات ہمارے سامنے لاتا ہے اور ہم اپنی عملی زندگی میں ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں. میں نے کل جو منظر دیکھا ہے، وہ دبلے دبلے ہاتھ، وہ پتلے پتلے ہاتھ، یہ کل جو صرف 3-4 گھنٹے میں پیکنگ ہوئی ہے نا، اس کے بعد بھی رات 11 بجے تک میں نے چند بچیوں کو اور چند خواتین کو جو کام کرتے دیکھا ہے. میں صبح 9 بجے سے دیکھ رہی ہوں، سوچ رہی ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے انہوں نے کلاسز لیں دیں کی کرائی، کام کیا، بریک بھی لی، کچھ بیچ میں سے پھر جاب پہ بھی گئے، پھر کام، اور یہ ابھی تک کوئی تھکن نہیں، کوئی ترس نہیں، کوئی رحم نہیں. جس طرح سامان پیک کیا ہے ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں تو جو جگہ چھوڑ کے آئے شیشے کی طرح چمک رہی ہے. کیا انہوں نے وقت لگایا، مال لگایا، اللہ ضائع کرے گا؟ میں سوچ رہی تھی اللہ تجھے کتنا پیار آ رہا ہوگا. میں نے کہا کہ کل تو زید تھے ہی، کل تو عبداللہ تھے ہی، کل تو ابو دہدا تھے، آج بھی بہت ہے. اس پہ پھر ایک اور مجھے جو جس کو کہتے ہیں اندوہناک خبر ملی، جس کو کہتے ہیں نا پہاڑ بن کے پڑی، نام لیے بغیر شیئر کروں گی، صرف ایک رغبت کے لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارا بلڈنگ کا پروجیکٹ چل رہا ہے، تو ہم نے ایسے ہی اپنی ویکینڈ کلاس میں اسٹوڈینٹس کو کہ بھائی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں کوئی باہر کا دے، یہ انتہائی غیر اسلامی طریقہ ہے کہ فائدہ میں اور آپ اس جگہ سے اٹھائیں اور پیسے ہمیں بیچارے دوسرے دیں، یہ انتہائی ناموافق سوچ ہے جو یہ رکھتے ہیں، لے کے پھر وہ ٹکٹیں بیچو اور اس کے ترلے کرو اور منتے کرو. ہاں اللہ نہ کرے کر سکتے ہیں جب پہلے ہم کنگلے ہو جائیں گے، جب ہم نہیں اس چیز کو دے سکیں گے. صرف 3 فارم ہمیں اسپونٹینیسلی 4 ملے اور اس میں سے ایک ساتھی نے 1 ملین ڈونیٹ کیا، تو کوٹھیاں بنگلے نہیں ہوں گے. یہاں میں سوچتی ہوں کہ میں اتنا پریشان اس رات اس بات پہ رات کو رہی، میں نے کہا اللہ اگر انہوں نے اپنا گھر کہہ دیا کہ میں بیچ کے اس کو دے رہی ہوں، اور میں نے کہا قرض اسنا میں لکھا ہے انہوں نے کہا نہیں انہوں نے ڈونیشن میں لکھا ہے. یقین کر میں اتنا روئی، میں نے کہا اللہ اگر میں نے اس کی قدر نہ کی، کل اگر ہم نے وہ جگہ لے بھی دی اللہ دے گا انشاءاللہ، اور ضروری نہیں ہم ان کی ایکسیپٹ بھی کریں آفر، انہوں نے دے دیا اللہ کو دے دیا، ہم چاہے اس کو رکھے نہ رکھے، یہ بات کی باتیں. میں نے کہا اس کا کون کل جواب دے گا؟ جب ہم دین کے نام پہ لوگوں سے پیسہ جمع کرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کتنے لوگ اپنے ارمان توڑتے ہیں، کتنی امیدوں سے لوگ دیتے ہیں، کتنے مما تو ہبون کے سوتے ہیں. مجھے تو اپنا ذرہ ذرہ اس وقت، میں اس وجہ سے کل بہت پریشان رہی کہ اللہ یہ جذبے کہاں سے آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ کتنا ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ بلڈنگز دیکھ رہے ہیں، آپ کے اندر کتنا ہے، یہ چھوڑیں کون لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بتائیں ہاتھ میں کتنا ہے، ہمارے ہاتھ میں کیا، اس کے ہاتھ میں. جب تک ہمیں اس بات کا یقین نہیں آتا نا کہ ہم جو دے رہے ہیں وہ مل رہے ہیں. صحابہ کرام کو نعوذ باللہ بے وقوف نہیں تھے، سٹوپڈ جذباتی ایموشنل نہیں تھے، ریئلسٹک تھے، اصل میں وہ تاجر تھے. اور آپ میں سے کبھی کسی نے اگر تجارت کی ہے نا تو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، یوں گھڑی کی سوئیوں کو دیکھ دیکھ کے کمپیوٹر کی اسکرینوں پہ بیٹھ کے اچھل رہے ہوتے ہیں، بٹس دے رہے ہوتے ہیں، کب دیں گے تو اتنا فائدہ ہے، آخر میں دیں گے تو ریٹ چڑھے گا. وہ تو یوں چوری چوری سودے خرید رہے ہیں کہ میرا سودا کوئی دوسرا نہ لے لے، بزنس تو ہے ہی سیکریسی کا نام. جتنا زیادہ آپ لوگ کسی چیز کو سیکرٹ رکھتے ہیں بزنس میں کامیاب ہوتے ہیں. ان کی نظریں آخرت پہ تھی، کبھی کوئی نیکی کا موقع آتا تھا وہ کبھی اس وقت تک دوسرے کو بتاتے ہی نہیں تھے، جب تک پہلے اپنا کنگال لیتے. کیوں؟ کہ یہ میرا موقع وہ لے جائے گا. اور یقین کریں میں جو آپ ساتھیوں کی سن رہی ہوں نا فیڈ بیک، مجھے تو غم لگ گیا کہ اللہ کہیں میں نے جو نیتیں کی ہوئی ہیں میرا حصہ ہی نہ پڑے، ایسا نہ ہو کہ ضرورت ہی نہ پڑے، نہیں اللہ مجھے میں نے اپنا ڈالنا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں محروم رہ جاؤں، یہ سودا کوئی اور لے جائے، میرا جنت کا گھر کوئی اور لے جائے. یعنی سوچئے جو خیر ہمارے اندر سے اٹھتی ہے نا वो हमसे काम कराती है, ये ईमान खिलाता है, ईमान बुलाता है। ये मिट्टी के कागज हैं। आप देखिए कि एक नैपकिन आपके हाथ में, जिसे आप अपने आंसू पोंछ रहे हैं इस वक्त, जिसे आप अपना नाक साफ करते हैं, इसी कागज पे एक मोहर लगा के आप उसको 1,000 करोड़ का नोट कह देते। आप तो कहते हैं ना ये लाख है, ये मिलियन है, वो जीरो है। जीरो गिराए तो 100 जो है वो 10 में बदल जाता है, 1,000 जो है वो 100 में बदल जाता है। सिर्फ एक एक जीरो लगता जाता है तो आप देखिए मिलियन ट्रिलियन में पहुंच जाते हैं। वो क्या है? सिर्फ कागज का टुकड़ा। सिर्फ उसका नसीब है कि उस पर मोहर सुरख रंग की लगी है कि नीली लगी है। आज आंखें बंद होंगी, कल कौन साथ लेके जाएगा हमारे? क्या हालात होंगे? हम कैसे कर सकते हैं? हम अल्लाह को फेस करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, यकूल अब्दु माली माली, मेरा बंदा कहता है मेरा माल। सारी जिंदगी एक ही रट है, मेरा माल। बैंक में कितना सारा दिन स्टेटमेंट्स पढ़ते रहे और खुश होते रहे, जाके देखते रहे पीछे क्या भेजा, प्रॉपर्टीज की वैल्यू गिनते रहे। कई लोग हैं सिर्फ डॉलर का रेट देखते रहते, कई शेयर्स की कीमतें गिनते जाते हैं। एक ब्रदर्स को मैं से जानती हूँ, किसी फैमिली को, कि शेयर्स का उनका बिजनेस था। वो कहती है हम सारे सो जाते हैं, ये बंदा रात को नहीं सोता, क्या करते हैं? टीवी देखते हैं। मैंने कहा रात को टीवी में क्या देखते हैं? कहती कुछ नहीं देखते, सिर्फ ये होता है कि जब हमारे सुबह होती है तो वहाँ अमेरिका में, जब रात होती है तो वहाँ सुबह होती है, तो डॉलर का शेयर्स का रेट निकल रहा होता है, तो उसको देख देख के कभी उछलते हैं और एक दिन बिस्तर पे पड़े एडमिट हो गए, पता चला जो उन्होंने चीज़ें ली थी वो डाउन हुई और उनका नुकसान हुआ। जहन में सिकर फिगर्स बनाए होते हैं, हाथ में कुछ भी नहीं, और हॉस्पिटलाइज होके कई दिन बीमार रह गया है कि जो शेयर्स लिए थे वो गिर गए। तो शेयर तो आज गिरा, कल इससे भी ज़्यादा गिरने वाला है। एक बहुत ही खूबसूरत और भी एक्सपीरियंस मैंने किया, ऐसी कहीं की को बात है, किसी की बातें सुनाती हूँ आपको, कि अमेरिका में जो आम तौर पे घर आता है ना, जैसे नॉर्मल, मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ हैं, लेकिन बिल्कुल आम दर्जे का जो एक सिंपल सा कोई घर लेता है वो तकरीबन 2-2.5 लाख डॉलर का आता है ना। अब आप उसको अपने हिसाब से जो भी समझ ले। तो एक दफ़ा एक ईमेल मुझे किसी ने भेजी, उसका सब्जेक्ट था ना, वो लिखा हुआ था हाउस फॉर सेल, और साथ ही सब्जेक्ट में लिखा था ओनली फॉर $10,000। आप लगाएं जैसे 5%, यानी 100 वाली चीज़ 5 रुपए की मिले। मैंने उसका टाइप टॉपिक देख के तो मैंने खोली कि देखो ये क्या है, 10,000 का घर। मैंने सोचा ये तो अंदर गली में कहीं भी हो फिर भी अच्छा, 5,000 तो कुछ बड़ी चीज़ नहीं। लेकिन आपको पता है वो घर क्या था? वो घर था लुसियाना में, जहाँ कुछ महीने पहले हरिकेन आया था। आप वहाँ अमेरिका में कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो बिल्कुल समंदर के किनारे हैं, ह्यूस्टन खुद एक समंदर के किनारे के साथ है, तो वहाँ समंदरी तूफान आते हैं, जैसे सुनामी आई थी इधर, आप लोगों ने सुना होगा, तो वहाँ सारे जो बीच पे घर होते हैं ना वो खाली करा लिए जाते हैं। तो वो घर क्या था कि जब मैंने उसकी तस्वीर को स्क्रॉल करके नीचे से देखा, उसकी पहले खूबियाँ लिखी हुई थी, इतने स्क्वायर फुट, इतना अच्छा, ये वो करके, तो आखिर में जो तस्वीर थी वो क्या थी कि वो एक घर, चारों तरफ उसके पानी में, और उसकी आधी आधी खिड़कियाँ उस पानी में डूब चुकी। समंदर में तूफान और सैलाब आने के बाद घर का मालिक कह रहा है कि कोई मुझसे ये 10,000 ले ले। एक हफ्ता पहले वो शायद 2-3-4 लाख डॉलर का था, और आज वो कह रहे सिर्फ 10,000 का ले लो। वांट टू बाय इट। ये तो पानी आंखों से देखा हुआ देख ले। आप सोचें हमें सिर्फ शक हो जाए ना कि हम ये बिल्डिंग खरीदने लगे हैं, लेकिन पीछे जो दरिया बह रहा है उसका बंद किसी भी वक्त टूटने वाला है, जो इधर इस घर में पानी आ जाएगा हम ये बिल्डिंग खरीदेंगे। तो जिस ज़मीन पे जलजले भी आने वाले हैं, जिस ज़मीन पे तूफान आने वाले हैं, सैलाब आने वाले हैं, इज़ल बिहार व फज्जिरात व इज़ल कबूर बोसिरात व इज़ल समा फतरत व इज़ल कवा के मुंतसरत, जिस ज़मीन पे इतने ज़्यादा हमले होने वाले, इतने हम वहाँ के घरों के लिए कितने शौक से लगाएं, तो जन्नत पर है उसके लिए कितने लगाने की जरूरत। जिसकी नज़रें ऊपर होती है ना उसको जन्नत दिख रही होती है अपने सामने, दुनिया वक्त इट्स ओके। जैसे आज की हमारी हालत है, मैं आज रात को जब तैयारी कर रही थी, मैं अपनी हर क्लास की अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा तैयारी करती हूँ। मैंने ये आयतें अल्लाह की तौफीक से बेशुमार दफ़ा पढ़ाई हुई हैं, अभी भी चंद महीने पहले भी पढ़ाई हैं, लेकिन मैं हर दफ़ा नए एंगल नए जज्बात से सोचती हूँ। तो मैंने रात को सोचा कि मैंने कभी ऐसे हालात में ये आयत नहीं पढ़ाई थी। क्या हम उसी दिन जगह की तंगी के लिए मजबूर हैं? हमें आज भी नहीं पता हमने कल कहाँ जाना है। अल्लाह करे ये जगह बन जाती है हमारे नसीब में, कोई पता नहीं आपको हम भेजेंगे मैसेज के नेक्स्ट वीक कहाँ आना। हम ये कितने इस वक्त जिसको कहते हैं ना कि पत्ता एक लटक रहा है दरख्त के साथ, कहीं गिर सकता है कहीं पड़ सकता है, इस वक्त अल्लाह ताला ये आयत हमारे सामने लेके आया कि लंतनाल उल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ایک طرف ہم اپنی زندگی کے آسائش کو دیکھیں، اپنے آرام کو دیکھیں، اور ایک طرف ہم اللہ کے دین کے لیے دیکھیں اور یہ ڈیزرو کتنا کرتے ہیں. اچھا، جب ایمان بہت ہوتا ہے نا بندے کے پاس، اس کو بڑے بڑے ٹارگیٹ بہت چھوٹے لگتے ہیں، اٹس نتھنگ. اور جس کے پاس ایمان کی کمی ہوتی ہے، چھوٹی سی چیزیں کہتے اتنا بک. ایسے ہی کچھ ہم نے ایکسپیرینس کیا پچھلے دنوں میں. میں نے کسی سے پوچھا کہ عام درجے میں لوگ ایک گھر کتنے کا لیتے ہیں نا، تو بتایا گیا کہ 2 سے 3 ملین کرون کا نا، آرڈنری. بڑے گھر تو 10 ملین کے بھی موجود ہیں. تو میں نے کہا کتنے لوگ وہاں رہتے ہیں؟ عموماً جن بچوں کے لیے بناتے ہیں وہ بھی نہیں رہتے، میاں بیوی ایک یا 2-4 بچے. کون اس کا رسپانسیبل ہے پے کرنے کا؟ میکسیمم باپ ہے تو 2 بیٹے، بیٹے سارے بھی کما لے، گھر کے 10 لوگ بھی کما رہے ہیں، فائدہ اٹھانے والے بھی 10 ہیں، کمانے والے اس کو پے کرنے لے بھی 10 ہیں. تو میں نے سوچا کہ جو ایک چھوٹے سے ٹارگیٹ کو 3 ملین پہ لے جاتے ہیں لوگ، صرف 10 لوگوں کی، 10 تو کم ہے، میں نے بہت زیادہ کہہ دیا، کس کے 10 بچے ہیں؟ 8 بچے ہیں، یہاں تو 2 بھی نہیں ہوتے مشکل سے، لیکن 3-4 لوگوں کے فائدے کے لیے 3 ملین لگتا ہے. تو وہ جگہ جہاں کونا کونا چپا چپا اس کا انسان استعمال کرتا ہے، ادھر کتنا کو لگنا چاہیے؟ میرے حساب سے تو کوئی 300 ملین سے بھی اوپر کا ہو تو بھی کوئی، اگر استعمال کریں. کل جب ہم نے وہ جگہ چھوڑی تو 2 نمازیں وہاں ہم نے اسی پیکنگ کے دوران پڑھی، عصر اور مغرب کی. میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں سجدے سے سر اٹھوں. میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس زمین پہ اب کل کیا ہوگا. اب میرے دل میں تسلسل ہے کہ کل ہمارے پاس وہاں کون آتا ہے. نان مسلم ملک ہے، عمارتیں نان مسلموں کو کی، اللہ نہ کرے کل وہ کسینو بن جائے، ہم روک تھوڑی سکتے، کچھ بھی بن سکتا ہے. تو زمین کے ٹکڑوں کے نصیب ہوتے ہیں نا. یہ سوال ہے نا آپ کا کہ بعض دفعہ ہم خرچ کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں، لیکن ساتھ خوف ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خرچ کرنے کو بھی دل چاہ رہا ہے لیکن پیچھے سے اندیشے بھی بہت سارے ہیں. یہ سوال ہے نا آپ کا. آپ لوگ جواب دیں. ماشاء اللہ 3 پاروں کی عالمہ تو آپ بھی بن چکی ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ نیت پہ اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی ان کا جواب دے. میں سوچتی ہوں کہ جب کوئی بندہ کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے تو عموماً ایک ہماری کہاوت روایت ہے، ہمیشہ بزنس شروع کرتے وقت لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ زیادہ سرمایہ لگائیں. جتنا بگ آپ کا کیپٹل ہوتا ہے نا، اتنا آپ کا سراؤنڈ بڑا ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں. تو اکثر بزنس اس لیے فلاپ ہو جاتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی چیزیں بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، لیکن بڑے اسٹور سستی بیچ کے زیادہ بیچ جاتے ہیں نا. تو میں سوچتی ہوں کہ جب ہم کاروبار دنیا میں کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں زیادہ لگائیں تاکہ زیادہ ملے. تو اگر کوئی دین کے معاملے میں، جیسے ہم نے ان کو دیکھ لیا ابو دہدا کو، تو اگر یہ بڑا لگاتے ہیں تو ہم ان کو کیا پھر عقل مند کہیں گے؟ کہ عقل مند تھے نا وہ لوگ. اللہ کے وعدے سچے، اللہ کا تو ہر وعدہ سچا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اصل بات یہ، ایسی جگہ نہ کاروبار شروع کر لیں کہ ڈوب جائیں. کاروبار لوگ کرنا چاہتے ہیں، پیسہ رکھا ہوتا ہے، صرف اس خوف سے نہیں کرتے، رکھ لیتے ہیں بینک میں کہ کیا پتہ ڈوب جائے. بینک میں پڑا ایک ہاتھ میں پڑا ایک پاس تو ہے نا. یہ دعا کیا کریں جب بھی اللہ کے نام پہ خرچ کریں نا کہیں بھی، یہ دعا کریں کہ اللہ ڈوبے نا. اور اگر کوئی لوگ اس کام کے کرنے والے ہیں تو ان کے لیے انتہائی محاسبے کا نقطہ ہے کہ اپنا ڈوب جائے خیر ہوتا ہے، دوسروں کا ڈبو دیا تو وہ بھرنا کہاں سے ہے. بعض لوگوں کے گھر بک جاتے ہیں، بینکرپسیز میں چلے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس چیز کا صحیح استعمال نہیں کیا ہوتا. دیکھیے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے بیچ کی چیز ہے. جب کوئی نیکی ہم کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر نیکی اس وقت آپ کو خوشی ہی دے، ورنہ جہاد نیکی نہ ہوتا، اللہ کے راستے میں چلنا نیکی نہ تھا. اصل بات جو نیکی کے بدلے میں انسان کو ملتی ہے نا، وہ دل کا سکون ہے. اگر آپ کرہن بھی خرچ کر رہی ہیں نا کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں، اگر اس کے جواب میں آپ کو خوشی مل رہی ہے نا نیکی، تو انشاءاللہ وہ آپ کا اجر حق پہ ہونے کی علامت ہے. اندیشے تو ہوتے ہی ہیں زندگی میں. آپ بالکل ایسے ہی سوچیں نا کہ کوئی بھی بزنس شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد خوف تو ہوتا ہی ہے نا. تو بس اس وقت یہ نہ سوچیں کہ ہم منافق ہیں یا ہم دے کے پچھتا رہے ہیں، بس اللہ پہ ڈال دیں معاملات کو. انہوں نے ایک بہت اچھا نقطہ بولا ہے، میں اس کو تھوڑا سا اپنے لفظوں میں دہراتی ہوں، کہ نیکی کرنا عقل کا فیصلہ نہیں ہے، دل کا فیصلہ. یہ لکھ لیں، دل چاہے تو کر لیں، عقل سے پوچھیں گے تو وہ کناروں پہ کھڑے رہیں گے. وہ شعر جو میں اکثر پی ہوں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو لب جوئے بام ابھی. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام عقل سے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں کودوں کہ نہ کودوں، تو ابھی کنارے پہ کھڑے ڈر رہے ہوتے ہیں. دل میں آگ لگی تھی محبت کی، گر پڑے، اللہ نے بچا لیا. تو دین کا کام کوئی عقل والوں کا کام نہیں ہے، اللہ کے کام جو ہے یہ دل والے کرتے ہیں. देखिए कि नेकी के बाद जो दिल की हालत है ना, ये नकदी नाम है। जन्नत कल तो बाद में मिलेगी। इमाम इब्ने तैमिया फरमाया करते थे कि मेरी जन्नत मेरे दिल के अंदर है। आखरत की जन्नत में दाखिल होने से पहले इस दुनिया की जन्नत में दाखिल होना पड़ता है। तो नेकी से जो खुशी मिलती है ना, आपको मैं एक लेक्चर ऑनलाइन पे जाके सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, शायद उसका नाम कुछ ऐसे ही था, मोमिन जन्नत का फूल। छोटा सा एक लेक्चर मैंने एक रमजान में बिल्कुल इफ्तारी के वक्त पे दिया था किसी जगह यूके में। तो उस वक्त मैंने ये शेयर किया था कि जन्नत में जो हमारे दिल की हालत होगी ना, जैसे एक आम तौर पे नॉर्मली हम दुनिया में रहते हैं ना, मुतमईन खुश, एक जनरल सी फीलिंग है। तो जन्नत में जो जन्नतियों के दिल की फीलिंग होंगी ना, अल्लाह सुब्हान तआला ने उसका सैंपल दुनिया में रखा है, जो नेकी करने के बाद दिल को लगता है। आप सोचिए कि जो नेकी के बाद खुशी का एहसास हो रहा होता है ना, कोई काम आपके हाथ से अच्छा हो जाए, आप वो कर ले, जो आप उसमें खुशी महसूस करते हैं ना, जन्नत में हर वक्त वो कैफियत होगी। यहाँ तक तिलावत सुनते हैं और साथ साथ अपना मुहासबा करेंगे।
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.